एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे मील के पत्थर पर बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ अपने लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे को एक पहचान दी,
हाँ,
बल्कि एक पूरी पीढ़ी की जो भावनाएं थीं, उनका जो भटकाव था, उसको आवाज दी। हम बात कर रहे हैं 1926 में आए उनके पहले उपन्यास द सन ऑल्सो राइजेज की।
बिल्कुल। और हेमिंग्वे, जिन्हें बाद में नोबल भी मिला, वो प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों से मतलब काफी गहरे तौर पे प्रभावित थे।
हाँ, सुराय इटली में एम्बुलेंस ड्राइवर थे और वहां घायल भी हुए थे
जी, और शायद इन्हीं अनुभवों ने उन्हें वो जो गर्ट्रूड स्टीन ने कहा था, खोई हुई पीढ़ी या लॉस्ट जेनरेशन, उसका सबसे सच्चा स्वर बनाया।
सही बात है, युद्ध के उस भयानक त्रासदी ने जैसे पारंपरिक मूल्यों पर, आस्था पर, यहां तक कि जीवन के अर्थ पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। और इसी मोहभंग को, इस आध्यात्मिक खालीपन को हेमिंग्वे ने अपने बहुत ही खास शैली में पेश किया।
हाँ, उनकी वो गद्य शैली जिसे हेमशेल सिद्धांत या आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं, वो अपने आप में क्रांति जैसी थी, है ना?
बिल्कुल। मतलब कम शब्दों में जो सतह पर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा अर्थ नीचे छिपा होता है। जैसे कोई आइसबर्ग जिसका बस थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिखता है, असल वजन तो नीचे पानी में होता है।
और द सन ऑल्सो राइजेज इसका एक बेहतरीन नमूना है।
उपन्यास के शुरुआत में ही दो सूत्र वाक्य हैं, एपिग्राफ्स, जो पूरी कहानी का मूड सेट कर देते हैं।
हाँ, पहला तो गर्ट्रूड स्टीन का ही वो मशहूर कथन, तुम सब एक खोई हुई पीढ़ी हो,
और दूसरा बाइबल के सभोपदेशक से, सूरज भी उगता है और सूरज डूब जाता है।
ये दोनों मिलके एक अजीब सा तनाव पैदा करते हैं, नहीं? एक तरफ इन किरदारों की बिखरी हुई दिशाहीन जिंदगी,
और दूसरी तरफ प्रकृति का वो लगातार चलने वाला, कभी ना रुकने वाला चक्र।
तो आज की इस बातचीत में हम इस उपन्यास की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। इसकी कहानी, इसके किरदार, उनके मन की उलझनें और इसके जो गहरे संदेश हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
और ये भी जानना दिलचस्प है कि ये उपन्यास काफी हद तक हेमिंग्वे की अपनी 1925 की स्पेन यात्रा पर आधारित है, खासकर पेम्पलोना का वो सैन फर्मिन फेस्टिवल।
हाँ, जिसे वो कहते हैं रोमा आकले, मतलब असली घटनाओं और लोगों से प्रेरित कहानी।
और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हेमिंग्वे ने कैसे अपने निजी तजुर्बों को साहित्य के इतने बड़े कैनवस पर उतारा। वो लॉस्ट जेनरेशन का दर्द, वो तलाश आज भी कहीं ना कहीं महसूस होती है ना?
बिल्कुल। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। समय है 1920 का दशक, जगह है पेरिस। शहर चमक दमक वाला है, लेकिन शायद अंदर से खोखला।
हाँ, और कहानी घूमती है अमेरिकी और ब्रिटिश प्रवासियों के एक ग्रुप के इर्द गिर्द। ये वो लोग हैं जो युद्ध के बाद यूरोप में जैसे एक निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं।
और हमारे नरेटर हैं जेक बांस, एक अमेरिकी पत्रकार जो खुद भी युद्ध देख चुका है।
जेक की कहानी में एक बहुत ही केंद्रीय चीज है, उसकी युद्ध में लगी चोट। उपन्यास में साफ साफ तो नहीं बताया गया कि चोट क्या थी, लेकिन ये जाहिर है कि इसने उसे शारीरिक रूप से नपुंसक बना दिया है।
और ये सिर्फ उसकी अपनी त्रासदी नहीं है, है ना? ये जैसे उस पूरी पीढ़ी की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नपुंसकता का प्रतीक बन जाती है, उनके अधूरेपन का।
हाँ, उनका जीवन देखिए, कैफे, बार, पार्टियां, बेहिसाब शराब पीना, सतही बातें, ऐसा लगता है जैसे वो युद्ध से मिले जख्मों का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें सुन्न करने की कोशिश कर रहे हैं।
सही कहा, इसमें कोई पारंपरिक कहानी वाला संघर्ष नहीं है, हीरो विलन टाइप का। संघर्ष ज्यादातर अंदरूनी है, रिश्तों का है।
और कहानी का जो भावनात्मक केंद्र है वो जेक बांस और लेडी ब्रेट एशली के बीच का वो मुश्किल, असंभव सा लगने वाला प्यार है।
ब्रेट बहुत आकर्षक है, आजाद ख्याल है, लेकिन जेक की वो शारीरिक अक्षमता उनके रिश्ते पर हमेशा एक सवालिया निशान लगाए रखती है।
और इसी उलझे हुए रिश्ते के धागों से दूसरे किरदार भी बंधे हैं। खुद लेडी ब्रेट एशली, जिसमें एक गजब का आकर्षण तो है, पर भावनात्मक रूप से वो जैसे किसी तूफान में फंसी नाव है।
उसका मंगेतर है माइक कैम्बल, स्कॉटलैंड का है, युद्ध देख चुका है, पर अब शराबी है और पैसों की तंगी से भी जूझ रहा है।
और फिर है रॉबर्ट कोन, एक अमीर यहूदी अमेरिकी लेखक, प्रिंसटन में कभी बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा था।
कोन इस ग्रुप में थोड़ा अलग है ना, उसने लड़ाई नहीं देखी, तो वो जीवन और प्यार को लेकर पुराने रोमानी ख्यालों में जीता है।
हाँ, और यही बात उसे बाकियों के नजरिए से, जो युद्ध देखकर सिनिसिज्म से भर गए हैं, बिल्कुल अलग कर देती है। पर बाद में यही आदर्शवाद उसके खिलाफ भी जाता है।
इन्हीं रिश्तों की उलझने, शराब और वो अनकही कड़वाहटें, ये सब मिलकर स्पेन में जो भावनात्मक विस्फोट होने वाला है उसकी जमीन तैयार करते हैं।
तो उपन्यास असल में ये सवाल उठा रहा है कि भाई जब विश्वास की पुरानी दीवारें गिर गई हों, जब प्यार और देशभक्ति जैसे शब्द खोखले लगने लगे, तो इंसान मतलब कहाँ ढूंढे।
सही, और जब नैतिकता के पैमाने ही गड़बड़ा गए हों तो फिर सम्मान और गरिमा वाली जिंदगी कैसे जिए।
ये कहानी शायद इस बारे में कम है कि किरदारों के साथ क्या होता है, और ज्यादा इस बारे में कि वो अपनी इस अंदरूनी टूटन को सहते कैसे हैं।
बिल्कुल सही कहा। चलिए अब इन किरदारों के सफर को थोड़ा और पास से देखते हैं। शुरुआत जेक बान से ही करते हैं जो कहानी सुना भी रहा है।
जेक
वो इस कहानी की धुरी जैसा है, एक नैतिक दिशा सूचक, भले ही वो खुद कितना ही खायल और कमजोर क्यों ना हो।
उसकी शारीरिक नपुंसकता, जैसा हमने कहा, वो एक बड़े भावनात्मक खालीपन का प्रतीक है।
हाँ, और वो ज्यादातर एक ऑब्जर्वर की भूमिका में रहता है। अपने दोस्तों की बर्बादी, उनकी निराशा को जैसे एक पत्रकार की नजर से देखता है, पर उसमें एक गहरा निजी दर्द भी शामिल होता है।
उसकी यात्रा बदलाव की नहीं बल्कि सहने की है ना, एंड्योर करने की। बिल्कुल, ब्रेट के लिए उसका प्यार बहुत गहरा है, पर उसे पूरा न कर पाने की मजबूरी उसे एक ऐसे तकलीफदेह विश्वास पात्र की भूमिका में डाल देती है जहां सिर्फ दर्द ही दर्द है।
लेकिन कभी कभी लगता है कि उसकी ये तटस्थता, क्या ये एक तरह की निष्क्रियता भी है? वो चीजों को होते हुए देखता रहता है, यहाँ तक कि ब्रेट और रोमेरो को मिलाने में भी एक तरह से मदद करता है, ये जानते हुए भी कि अंजाम अच्छा नहीं होगा।
ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद उसकी ये तटस्थता उसकी सहन शक्ति का ही एक रूप है। वो दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि शायद उसे लगता है कि दुनिया बदली नहीं जा सकती। वो तो बस एक कोड की तलाश में है, एक आचार संहिता, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे मूल्य जो इस बेमतलब सी लगने वाली दुनिया में टिक सकें।
और इसकी झलक उसे कहाँ मिलती है?
कभी स्पेन की बुल फाइटिंग की उस अनुशासित रस्मों वाली दुनिया में, तो कभी पहाड़ों में मछली पकड़ने की उस शांत और सरल सी क्रिया में।
पर सच्ची समझ
और जेक की इस सहन शक्ति के ठीक उलट हमें लेडी ब्रेट एशली में एक अलग तरह की बेचैनी दिखती है।
हाँ, वो उपन्यास की शायद सबसे यादगार किरदारों में से है। मोहक है, पर उतनी ही विनाशकारी और दुखद भी।
वो 1920s के दशक की उस नई औरत का प्रतीक है, आजाद ख्याल, यौन रूप से स्वतंत्र, हमेशा पुरुषों से घिरी रहने वाली।
पर उसकी ये आजादी ही जैसे उसके लिए एक पिंजरा बन जाती है।
बिल्कुल, युद्ध में अपने पहले प्यार को खोने का जख्म उसके अंदर बहुत गहरा है। वो एक स्थायी सुकून की तलाश में एक मर्द से दूसरे मर्द के पास जाती है, पर उसे मिलता है सिर्फ पल भर का भटकाव।
उसका रास्ता भी सीधा नहीं है, एक चक्रव्यूह जैसा है। वो बार बार खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाती है, पछताती भी है, पर फिर उसी रास्ते पर चल पड़ती है।
पर वही उसके लिए सबसे बड़ा दर्द भी है, क्योंकि वो कभी पूरा नहीं हो सकता।
लेकिन जब वो उस युवा सांड लड़ाके पेड्रो रोमेरो के साथ जुड़ती है, तो एक पल को लगता है जैसे वो कुछ असली, कुछ पवित्र पाना चाहती है।
हाँ, और फिर जब वो रोमेरो को छोड़ देती है ये कहते हुए कि वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती, वो उसके किरदार का एक दुर्लभ पल है जहां वो अपने विनाशकारी असर को पहचानती है।
ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी का एहसास है, भले ही ये उसे कोई मुक्ति न दिलाए।
बिल्कुल, अब बात करते हैं रॉबर्ट कोन की।
हाँ, कोन वो बाकियों के लिए एक आईने जैसा है जिसमें उन्हें अपनी कड़वाहट और मोह भंग और साफ दिखता है।
क्योंकि उसने युद्ध नहीं देखा तो वो उस निराशा को समझता ही नहीं जो बाकी सब महसूस कर रहे हैं। वो अब भी पुरानी किताबों वाले रोमानी बहादुरी के आदर्शों में जीता है,
और इसी वजह से बाकी लोग उसे थोड़ा बचकाना और दयनीय समझते हैं ना।
हाँ, ब्रेट के लिए उसका जुनून सिर्फ प्यार नहीं है बल्कि अपने जीवन को किसी रोमानी कहानी जैसा बनाने की एक बेताब कोशिश है। उसकी यात्रा धीरे धीरे नीचे गिरने की है।
शुरू में वो एक बाहरी आदमी है जिसके लिए थोड़ी हमदर्दी हो सकती है, पर धीरे धीरे वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिससे सब नफरत करते हैं।
वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि ब्रेट उससे प्यार नहीं करती, और उसकी यही जिद पैम्पलोना में ईर्ष्या, मारपीट और आखिरकार दोस्ती के पूरी तरह बिखर जाने का कारण बनती है।
कौन जैसे पुरानी दुनिया के उस आदर्शवाद की मौत का प्रतीक है जिसके लिए युद्ध के बाद की दुनिया में कोई जगह नहीं बची थी।
और फिर है पेड्रो रोमेरो, युवा सांड लड़ाका।
हाँ, सहायक किरदार होते हुए भी विषय के लिहाज से बहुत अहम है।
वो उन सब चीजों का प्रतीक है जो ये प्रवासी खो चुके हैं, जुनून, अनुशासन, प्रामाणिकता और एक गहरी पारंपरिक रस्म से जुड़ाव।
वो हेमिंग्वे के उस विचार, दबाव में गरिमा या ग्रेस अंडर प्रेशर को जैसे जीता है, अखाड़े में मौत का सामना करते हुए भी हिम्मत और कला का प्रदर्शन।
जीत के लिए रोमेरो एक आदर्श जैसा है, एक ऐसा आदमी जो एक साफ सम्मानजनक कोड के हिसाब से जीता है।
और ब्रेट के लिए?
ब्रेट के लिए वो उस शुद्ध शक्तिशाली मर्दानगी और जुनून का प्रतीक है जो उसके आसपास के टूटे हुए मर्दों में नहीं है। उनका रिश्ता दो दुनियाओं का टकराव है,
सम्मान और परंपरा की पुरानी दुनिया
और दिशाहीनता और नैतिक पतन की आधुनिक दुनिया।
जब ब्रेट उसे छोड़ती है तो ये भी मानती है कि उसकी दुनिया रोमेरो की दुनिया को सिर्फ खराबी कर सकती है।
हाँ, रोमेरो नहीं बदलता, वो एक स्थिर बिंदु की तरह रहता है जिसके सामने बाकी किरदारों का नैतिक भटकाव और साफ हो जाता है।
और वो बुल फाइटिंग जिसे कुरीडा कहते हैं, वो यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जीवन मृत्यु और सम्मान के साथ जीने का एक रूपक बन जाता है। और उसके प्रति जो गहरा जुनून और समझ होती है उसे अफिशियन कहते हैं। ये जेक और कुछ और लोगों में तो है, पर कोन जैसे बाहरी लोगों में नहीं।
अच्छा, तो अब कहानी के सफर पे चलते हैं। उपन्यास तीन हिस्सों में बंटा है, पहला हिस्सा पेरिस में।
हाँ, हम जेक बांस को शहर के उस जीवंत पर खोखले कैफे समाज में देखते हैं। उसके प्रवासी दोस्त बिल गॉटन, माइक कैम्बल, रॉबर्ट कोन सब यही हैं।
उनका जीवन शराब, डांस और कड़वी बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है।
यहीं पर कहानी का जो मुख्य भावनात्मक तनाव है वो सेट होता है, जेक का ब्रेट के लिए वो गहरा पर अधूरा प्यार।
ब्रेट आती है अपनी पूरी चमक और बेचैनी के साथ। जेक के साथ उसके खास नजदीकी भी दिखती है,
पर वो माइक कैम्बल से सगाई कर चुकी है और दूसरे मर्दों के साथ भी लापरवाही से रिश्ते बना लेती है। कोन उसके साथ एक छोटे से अफेयर के बाद उस पर बुरी तरह फिदा हो जाता है।
तो ये पहला हिस्सा एक दिशाहीनता, दबी हुई इच्छाओं और अनकहे दर्द का माहौल बना देता है।
बिल्कुल। दूसरा हिस्सा हमें स्पेन ले जाता है। प्लान बनता है पैम्पलोना जाने का, वहाँ के मशहूर सैन फर्मीन फेस्टिवल में बुल फाइटिंग देखने का।
लेकिन उससे पहले जेक और उसका दोस्त बिल गॉटन वो ब्रिग्यूटे के पास पहाड़ों में मछली पकड़ने जाते हैं।
हाँ, और ये सीन पेरिस और पैम्पलोना की आने वाली भागदौड़ और तनाव के बिल्कुल उलट है।
प्रकृति की शांति, बहती नदी, सादी दोस्ती, खाना पीना, यहाँ जेक को कुछ पल के लिए वो सुकून और व्यवस्था मिलती है जो उसकी बाकी जिंदगी में नहीं है।
ये जैसे एक ताजगी देने वाला, एक शुद्ध करने वाला पल है इससे पहले कि वो फिर से उस भावनात्मक तूफान में खिंच जाए।
और वो तूफान आता है पैम्पलोना में।
हाँ, ब्रेट, माइक और कोन, जिसे कोई नहीं चाहता था पर वो फिर भी आ गया, सब वहाँ जमा होते हैं। फेस्टिवल शुरू होता है और उसके साथ ही ग्रुप के अंदर के सारे दबे हुए तनाव जैसे फट पड़ते हैं।
शहर में शराब, नाच गाना, धार्मिक जुलूस, सांडों की दौड़ का शोर और ये पागलपन वाला माहौल किरदारों की अपनी भावनात्मक उथल पुथल को और बढ़ा देता है।
माइक नशे में और अपनी असुरक्षाओं से घिरा लगातार कोन पर ताने कसता है उसकी यहूदी पृष्ठभूमि पर और इस बात पर कि वो क्यों नहीं समझता कि ब्रेट उसे नहीं चाहती।
और मामला तब और बिगड़ता है जब ब्रेट उस युवा टैलेंटेड बुल फाइटर पेड्रो रोमेरो के प्रति आकर्षित हो जाती है
और जैक अपने दर्द को दबाकर उनकी मुलाकात करवाता है। रोमेरो की सादगी, उसका जुनून, उसकी कला ब्रेट को मोह लेती है और उनका अफेयर शुरू हो जाता है।
इससे कोन बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है।
हाँ, वो गुस्से में पहले जैक और माइक से लड़ता है और फिर रोमेरो को भी पीटता है, हालांकि रोमेरो भी उसे बुरी तरह घायल कर देता है।
दोस्ती का जो नाजुक सा धागा था वो पूरी तरह टूट जाता है। ग्रुप विश्वासघात और हिंसा के मलबे में बिखर जाता है।
तीसरा और आखिरी हिस्सा इस बिखराव के बाद का है। फेस्टिवल खत्म, ग्रुप टूट चुका है,
कोन चला गया है, माइक और बिल भी चले जाते हैं। जैक अकेला स्पेन में रह जाता है, सैन सेबास्टियन के शांत समुंदर किनारे शायद थोड़ा सुकून ढूंढने की कोशिश करता है।
फेस्टिवल की वो पागल कर देने वाली एनर्जी के बाद अब एक उदास खालीपन है।
लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी शांति मिलती महसूस होती है, मैड्रिड से ब्रेट का टेलीग्राम आ जाता है।
उसने रोमेरो को छोड़ दिया है ये सोचकर कि वो उसे बर्बाद कर देगी। अब वो अकेली है और उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं।
और जेक अपने प्यार और शायद एक कर्तव्य की भावना से बंधा हुआ एक बार फिर उसकी मदद के लिए चल पड़ता है।
और फिर आता है वो अंतिम सीन जो मॉडर्न लिटरेचर के सबसे यादगार सीन्स में से एक गिना जाता है।
मैड्रिड में एक टैक्सी में जेक और ब्रेट। ब्रेट अफसोस जताती है, कहती है हम दोनों एक साथ कितना अच्छा वक्त गुजार सकते थे।
जिस पर जेक का जवाब है जो उपन्यास का आखिरी वाक्य भी है, हाँ मैंने कहा, क्या ये सोचना खूबसूरत नहीं है?
Yes, isn't it pretty to think so?
ये एक वाक्य उनके रिश्ते की पूरी त्रासदी को जैसे समेट लेता है, एक खूबसूरत ख्याल, एक संभावना जो हकीकत में कभी मुमकिन ही नहीं हो सकती।
कहानी किसी समाधान पर नहीं पहुंचती, बल्कि उनकी उस स्थायी न बदलने वाली स्थिति पर एक बहुत ही शक्तिशाली टिप्पणी के साथ खत्म होती है। वो अपने प्यार में भी फंसे हैं और अपनी परिस्थितियों में भी। अगर अब हम मुख्य विषयों पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले और सबसे साफ है खोई हुई पीढ़ी का वो मोहभंग।
हाँ, युद्ध ने जैसे किरदारों के अंदर से आस्था, प्रेम, देशभक्ति, तरक्की, इन सब पर से विश्वास छीन लिया है। वे नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जैसे कंगाल हो गए हैं।
वे यूरोप में भटक रहे हैं किसी अर्थ की तलाश में, पर उन्हें शराब, यात्रा और पल भर के यौन संबंधों में सिर्फ भटकाव ही मिलता है।
उनकी वो कड़वाहट, उनकी दिशाहीनता उस दुनिया की सीधी देन है जिसके पुराने मूल्य युद्ध की आग में जलकर राख हो गए थे।
इसी से जुड़ा है उद्देश्यहीनता बनाम उद्देश्य का विषय।
बिल्कुल, इन प्रवासियों का जीवन बिना किसी मंजिल के बहता जाता है। बार, शहर, प्रेमी बदलते रहते हैं, पर कोई दिशा नहीं मिलती।
और इसके ठीक उलट खड़ा है पेड्रो रोमेरो और उसका वो अफिसियोन, सांडो की लड़ाई का जुनून।
हाँ, उसका जीवन अनुशासन, कला और एक स्पष्ट उद्देश्य से चलता है। कोरिदा यहाँ जीने और मौत का सामना करने का एक सच्चा तरीका पेश करता है।
प्रेम और संवाद की असफलता भी एक बहुत बड़ा थीम है।
हाँ, जेक और ब्रेट का रिश्ता तो अधूरे प्यार की कहानी है ही, जिसे जेक का शारीरिक घाव नामुमकिन बना देता है।
और ये घाव एक गहरे भावनात्मक अलगाव का भी प्रतीक है।
पात्र शायद ही कभी वो कहते हैं जो वो महसूस करते हैं। संवाद अक्सर कटा हुआ, अधूरा या पूरी तरह फेल हो जाता है। बहुत कुछ अनकहा रह जाता है,
जिसे हेमिंग्वे की स्टाइल बड़ी खूबी से दिखाती है।
पुरुषत्व और नपुंसकता का सवाल भी हेमिंग्वे उठाते हैं।
हाँ, जेक की शारीरिक नपुंसकता उसे मर्दानगी को नए सिरे से परिभाषित करने पर मजबूर करती है, सहन शक्ति, आत्मनियंत्रण और एक निजी सम्मान संहिता के पालन के जरिए।
जबकि रॉबर्ट कोन एक असफल रोमानी मर्दानगी का प्रतीक है। माइक कैंपिल की मर्दानगी जहरीली और असुरक्षित है।
और पेड्रो रोमेरो शक्तिशाली, कुशल और सम्मानित मर्दानगी का आदर्श बन जाता है।
अंततः ये उपन्यास नैतिक और आध्यात्मिक दिवालियापन के सामने मुक्ति या अर्थ खोजने के संघर्ष की कहानी है। शीर्षक जो बाइबल से लिया गया है वो जीवन के चक्रीय स्वभाव की ओर इशारा करता है, और शायद ये भी कि अर्थ बाहरी सफलताओं में नहीं बल्कि जीवन की सीमाओं को स्वीकार करने और गरिमा के साथ जीने में मिल सकता है।
दबाव में गरिमा का विचार इसी से जुड़ता है।
बिल्कुल। कथा शैली की बात करें तो जैक का फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पूरी कहानी को उसके निजी अनुभव से रंग देता है। उसका दर्द, उसकी टिप्पणियां, उसकी दबी हुई इच्छाएं।
वो घटनाओं को तटस्थता से बताने की कोशिश करता है, पर हम पढ़ने वाले हमेशा उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं।
कहानी की संरचना भी किरदारों की भटकती जिंदगी की तरह है, एक जगह से दूसरी जगह, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते तक, और वो तीन हिस्सों का ढांचा एक खास भावनात्मक उतार चढ़ाव बनाता है।
और हेमिंग्वे की भाषा, वो हिमशेल सिद्धांत यहाँ अपने चरम पर है। वाक्य छोटे, सीधे, सपाट लगते हैं, डिटेल्स कम होती हैं,
पर असली भावनात्मक वजन सतह के नीचे होता है, जो कहा नहीं गया है उसमें। पात्रों की गहरी निराशा, उनका प्यार, उनकी ईर्ष्या, ये सब सीधे तौर पर बयान नहीं किए जाते,
बल्कि उनके वो आधे अधूरे संवाद, छोटे छोटे इशारे और बार बार दोहराई जाने वाली क्रियाएं, जैसे लगातार शराब ऑर्डर करना, उनसे जाहिर होते हैं।
प्रतीक भी बहुत मजबूत हैं। जेक का घाव शारीरिक नपुंसकता के साथ साथ भावनात्मक खालीपन और जुड़ने की अक्षमता का प्रतीक है।
कोरिडा या साणों की लड़ाई जीवन, मृत्यु, रस्म और सम्मान का एक जटिल प्रतीक है।
बाग्यूटे में मछली पकड़ना पवित्रता, शांति और पलायन का प्रतीक है। और शराब, जो हर तरफ है, वो मेलजोल का जरिया भी है, दर्द भुलाने का साधन भी और झगड़ों को भड़काने वाली चिंगारी भी।
इस उपन्यास को पढ़कर जो असर होता है वो काफी गहरा और स्थायी है। ये कोई खुश करने वाली कहानी नहीं है, ना ही कोई आसान जवाब देती है।
हाँ, ये पढ़ने वाले को उदासी, हमदर्दी और एक तरह की खामोश पीड़ा से भर देती है। इसका असर इसकी ईमानदारी में है। दर्द, नुकसान और एक टूटी हुई दुनिया में जीने के संघर्ष को बिना किसी लीपापोती के दिखाने में।
जेक का वो शांत दुख और उसकी सहन शक्ति पाठक को उसके काफी करीब ले आती है।
हाँ, और ब्रेट या कोर्न जैसे किरदारों के लिए निराशा और दया का भाव भी आता है, जबकि रोमेरो के लिए सम्मान और शायद थोड़ी जलन भी।
जो स्थायी छाप रह जाती है वो उस बर्बादी की है, युद्ध के बाद खोई हुई जवानी, प्यार और संभावनाओं की बर्बादी।
और ये हमें अपने जीवन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारी आस्थाएं हिल जाती हैं तो हम अर्थ कैसे खोजते हैं, हम अपनी अधूरी इच्छाओं से कैसे निपटते हैं।
सम्मान और गरिमा से जीने का मतलब क्या है? ये निराशा के एक खास ऐतिहासिक दौर का चित्र तो है ही, पर इसकी गूंज किसी भी अनिश्चितता भरे दौर में सुनाई दे सकती है।
अंततः ये उपन्यास शायद यही दिखाता है कि जीवन का अर्थ बाहरी हालात को बदलने में उतना नहीं है जितना उन हालात का सामना करने के हमारे अपने तरीके में है।
ये मानवीय सहन शक्ति और टूटी हुई दुनिया में गरिमा के साथ जीने की जद्दोजहद का एक ऐसा चित्रण है जो समय से परे है और आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।